ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में अक़वाम-ए-मुत्तहिदा जनरल असेंबली में मुस्तक़बिल की सरबरा कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। आलमी हुक्मरानी को नई शक्ल देने के लिए सरबरा कॉन्फ्रेंस में अहम मुस्तक़बिल का समझौता इख्तियार किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई है। 26 असेंबली हलकों के लिए बुध को वोट डाले जाएंगे। सरकार अगले साल तक 1,00,000 4G मोबाइल टावर नस्ब करेगी। लेबनान में इसराइली हमलों में कम से कम 274 अफराद हलाक और 1,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं और सेंसेक्स और निफ्टी अब तक के सबसे ऊंचे मुकाम पर बंद हुए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अक़वाम-ए-मुत्तहिदा जनरल असेंबली में मुस्तक़बिल की सरबरा कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं, जिसका मौजू है एक बेहतर कल के लिए कसीर जहती हल। वज़ीर-ए-आज़म ने कल शाम न्यूयॉर्क में एक गोलमेज मीटिंग में सनअती रहनुमाओं से मुलाकात की थी। इसका एहतमाम मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने किया था।
डेमोक्रेटिक वैल्यूज और टेक्नोलॉजी का मिलना मानव कल्याण की गारंटी देता है, एक विश्वास पैदा करता है। एंड टेक्नोलॉजी माइनस डेमोक्रेसी किसी भी संकट के लिए एक वातावरण पैदा कर देता है। और भारत एक देश है जिसके पास टैलेंट भी है, डेमोक्रेसी भी है, मार्केट भी है।
सनअती लीडरों से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी का अहम रोल है और इंसानी फलाह बहबूद के लिए जमहूरी अकदार के साथ टेक्नोलॉजी का तवाजुन जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि जमहूरी अकदार के बगैर टेक्नोलॉजी बहरान की फजा पैदा करती है और भारत एक ऐसा मुल्क है जहां सलाहियत जमहूरियत और मार्केट है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि एक खुद कफील और मजबूत भारत की तरक्की के सफर में वो उन्हें एक साथी, मुसाफिर और शराकतदार के तौर पर देखते हैं। उन्होंने इस बात पर एतमाद का इजहार किया कि भारत और अमरीका की टेक कंपनियां एक साथ मिलकर आलमी चैलेंजों को सुलझाने में अहम रोल अदा करेंगी। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि जब भारत की सबसे बड़ी जमहूरियत तेजी से तरक्की करती है तो यह आलमी अमन और खुशहाली को भी यकीनी बनाती है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर सनअत में 15 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी की है और भारत इस शोबे में दुनिया भर से बड़ी सरमायाकारी हासिल कर रहा है। तरक्की याफ्ता भारत की तरफ मुल्क के सफर में टेक्नोलॉजी को एक अहम सुतून करार देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनकी सरकार ने आज भारत में तकनीकी तालमेल और सरमायाकारी के लिए बेमिसाल इम्कानात पैदा किए हैं। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि आज भारतीय हुक्मरानी का नमूना न सिर्फ पॉलिसी बल्कि मुस्तहकम और पेशगोई करने वाली पॉलिसियों पर मबनी है जो हर शोबे में सरमायाकारों को यकीन दिलाती है।
भारत छठवां देश बन चुका है विश्व में जिसने अपना स्वतः 4G स्टैक का उत्पादन और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड बना लिया है। इस 4G स्टैक में सारे भारतीय कंपनी अगले साल के मध्य तक 1,00,000 टावर।
वजीर खजाना निर्मला सीतारमन 5 रोजा दौरे पर उज़्बेकिस्तान रवाना होंगी, जो कल से शुरू हो रहा है। अपने दौरे के दौरान वजीर खजाना बुध और जुमेरात को समरकंद में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के गवर्नरों की बोर्ड की नवी सालाना मीटिंग में शिरकत करेंगी। मोहतरमा सीतारमन भारत और उज़्बेकिस्तान के दरमियान बाहमी सरमायाकारी मुआहदे BIT पर भी दस्तखत करेंगी। वजीर खजाना उज़्बेकिस्तान, कतर, चीन के अपने हम मनसबों और AIIB के सदर के साथ अहमियत के हामिल बाहमी मीटिंगें भी करेंगी। अपने दौरे के हिस्से के तौर पर इम्कान है कि मोहतरमा सीतारमन उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव से मुलाकात करेंगी। इन मसरूफियात के अलावा मोहतरमा सीतारमन समरकंद स्टेट यूनिवर्सिटी और ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री यादगार भी जाएंगी। मोहतरमा सीतारमन मुख्तलिफ सेक्टरों की नुमाइंदगी करने वाली भारतीय बिरादरी से भी बातचीत करेंगी। 10वें कॉमनवेल्थ पार्लिमानी एसोसिएशन CPA की 2 रोजा इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस आज नई दिल्ली में शुरू हुई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मीटिंग की सदारत कर रहे हैं, जो CPA इंडिया रीजन की सदर नशी भी हैं। इस कॉन्फ्रेंस का मौजू है पायदार और सबकी शमूलियत वाली तरक्की को हासिल करने में कानून साज इदारों का रोल। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मुल्क के कानून साज इदारों को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत पर जोर दिया, ताकि बदलते हुए उस मंजरनामे के तनाजुर में लोगों की ख्वाहिशात और उमंगों को पूरा किया जा सके जब टेक्नोलॉजीज और मवासलात का वसीला लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। बिजली के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और अपनी वजारत की 100 दिन की हसूलियाबियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 2030 तक मुल्क भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए 1,00,000 चार्जिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। वजीर मौसूफ ने कहा कि मुल्क में फिलहाल कुल 34,000 चार्जिंग स्टेशन काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के तहत बिलखसूस 1,24,000 महरूम कबायली कुनबों को बिजली फराहम करने का निशाना तय किया है। भारत की खुराक के तहफ्फुज़ और मयारात से मुतालिक अथॉरिटी FSSAI ने तिरुपति लड्डुओं में मुबैना मिलावट के मामले में घी सप्लाई करने वाले को वजह बताओ नोटिस जारी किया है। सरकारी जराये के मुताबिक क्वालिटी टेस्ट में सप्लायरों के घी के सभी 4 नमूने दुरुस्त नहीं पाए गए। इससे पहले सेहत के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने कहा था कि उनकी वजारत ने आंध्र प्रदेश हुकूमत से इस मामले पर एक रिपोर्ट भी तलब की है। मवासलात के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि हुकूमत ने अगले साल के वस्त तक 1,00,000 4G मोबाइल टावर नस्ब करने का निशाना तय किया है। उन्होंने कहा कि तय किए गए निशाने में से अब तक 36,574 4G मोबाइल टावर नस्ब किए जा चुके हैं। जनाब सिंधिया ने यह बात नरेंद्र मोदी हुकूमत की तीसरी मुद्दतकार के पहले 100 दिन के दौरान की गई अपनी वजारत की हसूलियाबियों के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। जनाब सिंधिया ने मजीद कहा कि भारत दुनिया भर में तेजी के साथ 5G खिदमात फराहम करने वाला मुल्क बन गया है और मुल्क भर में तकरीबन 4.5 लाख 5G बेस ट्रांसीवर स्टेशन कायम किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये टेक्नोलॉजी मुल्क के तकरीबन सभी जिलों में पहुंच गई है और 4G नेटवर्क के तहत अब तक 97% से ज्यादा शहरी इलाकों और 80% आबादी का इहाता किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में 6ठा ऐसा मुल्क बन गया है जिसने 4G स्टैक की अपनी खुद की तैयारी की है और एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है। मरकजी वजीर ने मजीद कहा कि फिलहाल मोबाइल कनेक्शन की तादाद बढ़कर 117 करोड़ हो गई है जो 10 साल पहले महज 90 करोड़ थी। भारत आलमी सतह पर एक सरकर्दा टेलीकॉम मार्केट के तौर पर उभरा है और उसके साथ साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी में भी इजाफा हुआ है और अब इसकी रसाई 25 करोड़ से तकरीबन 95 करोड़ अफराद तक हो गई है। जनाब सिंधिया ने मजीद कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने मुल्क भर के सभी शहरियों के लिए कनेक्टिविटी को तरजीह दी है और टेली मवासलात के महकमे के जरिए इकदाम किए गए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस कनेक्टिविटी के सिलसिले को बरकरार रखना निहायत अहम है ताकि मुल्क भर में सबकी शमूलियत वाली तरक्की को और फरोग को परवान चढ़ाया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि डाक चौपाल पहल ने अपनी कामयाबी को साबित कर दिया है क्योंकि 15,000 से ज्यादा इस तरह की चौपालें मुल्क की सतह पर मुनक्किद की गई हैं। उन्होंने मुतला किया कि ये चौपालें देही सतह पर बराए रास अहम सरकारी खिदमात की सहूलत फराहम कर रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि डाकघर निर्यात केंद्र पहल के तहत महकमे ने 3,400 से ज्यादा नए बरामदकारों को शामिल किया है ताकि देही और छोटे सतह के बरामदकारों को मदद फराहम की जा सके। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम आज शाम खत्म हो गई। इस मरहले में बुध को मरकज के जेर इंतजाम इलाके के 5 अजला के 26 असेंबली हलकों में वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात 3 मरहलों में हो रहे हैं। आजादाना, मुनसिफाना और बेहतर पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए जरूरी इंतजाम किए गए हैं। पेश है इस सिलसिले में श्रीनगर के हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट।
जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को मुनक्कद हुए पहले मरहले के इंतखाबात जिसमें 61% से जायद राय दहिंदगान ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया की कामयाब तकमील के बाद 25 सितंबर को मुनक्कद होने वाले दूसरे मरहले के इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। इस मरहले के तहत वस्ती कश्मीर के जिला श्रीनगर, गांधरबल और बड़गाम के साथ साथ जम्मू खिते के पुंछ, राजौरी और रियासी जिलों के 11 असेंबली हलकों में वोट डाले जाएंगे। इस मरहले में शेड्यूल ट्राइब्स के लिए मखसूस 7 सीटों पर भी वोट डाले जा रहे हैं। मरहले के तहत 25,78,099 राय दहिंदगान 239 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यूटी सरबरा तारिक हमीद कर्रा, अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी शामिल हैं। चुनाव कमीशन ने इस मरहले के लिए 26 हलकों में 3,502 पोलिंग स्टेशन कायम किए हैं और उन्हें 100% वेबकास्टिंग के साथ जोड़ दिया गया है। पोलिंग मराकज पर राय दहिंदगान की کی سہولت کے لیے ہر طرح کی بنیادی سہولیات دستیاب رکھی جا رہی ہیں. تمام انتظامات کو حتمی شکل دی گئی ہے اور پولنگ مواد افرادی قوت مشینری کو اپنے اپنے پولنگ مراکز کی طرف روانہ کیا جا رہا ہے. خبرنامے کے لیے شرینگر سے میں سنیل کول.
یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. لبنان میں ملک بھر میں ہوئے اسرائیلی حملوں میں کم از کم 374 افراد ہلاک اور 1000 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں. ملک کی وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حملوں میں مرنے اور زخمی ہونے والوں میں بچے، خواتین اور میڈیکل سے وابستہ افراد شامل ہیں. اسی دوران اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے لبنان میں 800 ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ ایران کا حمایت یافتہ حزب اللہ گروپ انہیں ہتھیاروں کے ذخیرے کے طور پر استعمال کر رہا تھا. حزب اللہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے اس کے جواب میں شمالی اسرائیل کی طرف درجنوں راکٹ داغے ہیں. اس نے کہا ہے کہ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملوں کے جواب میں درجنوں میزائل کے ذریعے اسرائیل کے فوجی ٹھکانوں اور دوسرے مقامات پر حملے کیے گئے ہیں. ایک الگ بیان میں اسرائیلی دفاعی فوج IDF نے کہا ہے کہ لبنان سے کم از کم 35 راکٹ داغے گئے ہیں. بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ فضائی دفاعی فوج نے کئی راکٹ کو مار گرایا ہے جبکہ دوسرے راکٹ خالی جگہوں پر گرے ہیں. اس سے پہلے دن میں IDF نے راجدھانی بیروت اور دوسری جگہوں پر رہنے والے لبنان کے لوگوں کو ایک فون کال کے ذریعے خبردار کیا تھا کہ وہ اپنی رہائش گاہ خالی کر دیں اور حزب اللہ کو کے ہتھیار والی عمارت سے دور رکھیں. وزیراعظم نریندر مودی نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 79ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکنالوجی کے محفوظ اور ذمہ دارانہ اور اس کے متوازن استعمال کے نظام کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کے عالمی ڈیجیٹل حکمرانی چاہتے ہیں جہاں سالمیت اور یکجہتی برقرار رہے. انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر DPI پل کے طور پر کام کرنا چاہیے نہ کہ رکاوٹ کے طور پر. چھتیس گڑھ میں آج بجلی گرنے سے 8 لوگ ہلاک ہو گئے. میلوکوین میں 4 اسکولی بچے بھی شامل ہیں. یہ حادثہ راجنند گاؤں ضلع کے سومنی علاقے میں پیش آیا. بجلی ایک ٹین شیڈ پر گری جہاں کچھ لوگ کنارے بارش سے بچنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. بھارتی شیئر بازار میں آج گھریلو اکویٹی انڈیکس مضبوط عالمی اشاروں کے درمیان ابھی تک کی سب سے بلند ترین سطح پر بند ہوئے. BSE سینسیکس ابھی تک کی اپنی سب سے بلند ترین سطح 84,928 پر بند ہوا جبکہ NSE نفٹی اپنی ریکارڈ بلند ترین سطح 25,939 پر بند ہوا. بھارتی بحریہ کے 2 افسر نیویکا ساگر پریکرما مہم جوئی کے دوسرے ایڈیشن کے تحت دنیا کا چکر لگانے کے مشن پر جائیں گے. آج نئی دلی میں کرٹن ریزر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بحریہ کے نائب سربراہ وائس ایڈمرل کرشنا سوامی ناتھن نے کہا کہ بھارتی بحریہ کا جہاز ٹرینی لیفٹیننٹ گورنر روپا اے اور لیفٹیننٹ گورنر دلینا اکے کو لے کر اس مہم پر روانہ ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ایڈمرل دنیش ترپاڈی 2 اکتوبر کو گوا میں نول اوشین سیلنگ نوٹ سے اسے جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے. انہوں نے اس مہم کو بھارتی بحری وراثت کو با اختیار بنانے اور اختراع اور ذمہ داری کا ایک سفر قرار دیا جو ایک درخشاں اور با اختیار مستقبل کی نئی راہ ہموار کرے گا. 8 مہینوں کے سفر میں دونوں افسر بغیر کسی باہری تعاون کے 21,600 بحری میل کا سفر کریں گے اور وہ پوری طرح ہوائی طاقت پر منحصر ہوں گے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نیویارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں مستقبل کی سربراہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکنالوجی کو محفوظ اور ذمہ دارانہ اور اس کے متوازن استعمال کے نظام کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کے عالمی ڈیجیٹل حکمرانی چاہتے ہیں جہاں سالمیت اور یکجہتی برقرار رہے. جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے انتخابی مہم ختم ہو گئی ہے. 26 اسمبلی حلقوں کے لیے بدھ کو ووٹ ڈالے جائیں گے. سرکار اگلے سال تک 1,04,000 4G موبائل ٹاور نصب کرے گی اور لبنان میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 274 افراد ہلاک اور 1,000 سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.